शुरू में बात की थी हमने 10 कमेंडमेंट्स की, अहकामाते अशरा। यहाँ तक तकरीबन 8 अहकाम हुए। ये वो थे जिनका ताल्लुक था अफराद के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ। अगली आयत में अब कुछ ऐसे अहकामात हैं तौरात के जिसका ताल्लुक इज्तमाईयत के साथ था, कौमियत की बेस पे। वो क्या थे, अब उनका तذکرہ होगा। आयत लंबी भी है, बीच में पॉजेस भी आएंगे, इसलिए एक दफ़ा मैं इसका तर्जमा आपके साथ करके फिर थोड़ी सी इसकी आपको तफसील दे के फिर इंशाल्लाह दोबारा बताऊंगी, तो उम्मीद है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब कुछ आयतें ज़्यादा लंबी होती हैं ना तो उसकी बुनियाद पे जहन इधर उधर जाने लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इस अखस नामी साकुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता वादा लिया, किन से लिया? यहूद से लिया। कहाँ लिया था, कैसे लिया था? तौरात के ज़रिए लिया था। क्या था वो? आप लोग अपने पारों पे 1 2 कर सकते हैं, जहाँ से जहाँ तक का हिस्सा होगा वहाँ 1 2 3 4 कर लीजिएगा। क्या वादा था? नंबर एक, ला तस्फिकून दिमा अकुम। यहाँ तक, ला से पहले ए डाल दें या वन डाल दें, ये था पहला हुक्म। पहली इज्तमाई ज़िंदगी की शर्त क्या थी? कि तुम आपस में एक दूसरे के खून नहीं बहाओगे, ब्लड शेड नहीं करोगे, और ये आज मुसलमानों को भी है, यानी कत्लो गारत गरी नहीं करोगे। आज है हमारे मुसलमानों में भी ये हुक्म? बिल्कुल है, यानी कोई किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल नहीं करेगा, इस रंग में आप कह लें, क्योंकि वो भी अपने दौर के मुसलमान लोग थे। ये पहला हुक्म। दूसरा हुक्म कहाँ से अब लिखेंगे? वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, अपने हम वतनों को उनके घरों से नहीं निकालो, यानी लोगों को उनके घरों से ही निकालोगे किसी भी सूरत में, जुल्म की बुनियाद पे, ज्यादती की बुनियाद पे, या उनके घर पे कब्ज़ा करके या उनके मालों पे कब्ज़ा करके उनके घर से नहीं निकालोगे। वन तुम तशहदून, और तुम इस चीज़ पर गवाह हो, यानी तुमने इस बात को माना कि ये कोई छोटी बात नहीं थी, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ये सारी बातें आसान की थी। फिर क्या हुआ? सुम्मा अंतुम, फिर हो तुम, हा उलाई, ऐसे ही लोग। क्या किया तुमने? तक्तुलून अनफुसकुम, तुमने कत्ल किया आपस में। ये क्या हुआ? वहाँ आपने वन लिखा था ना, तो ये 1 पॉइंट का सबने जवाब है। अल्लाह ने क्या कहा था? ला तस्फिकून दिमाकुम, ठीक है। इन्होंने क्या किया? तक्तुलून अनफुसकुम, हुक्म अदूली की ना। समझ में आ रही है ना बात? यानी अल्लाह के पहले हुक्म को रिजेक्ट कर दिया, नहीं मानी बात, कत्ल कर दिए। फिर और तुमने क्या किया? व तुखरिजून फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम, तुमने एक गिरोह या एक फ़िरक़े को जो तुम ही में से था उनके घरों से निकाल दिया। ये तुमने दूसरे काम के जवाब में कर दिया। अल्लाह ताला का हुक्म था ला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम, इन्होंने क्या किया? तुखरिजून फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम, ठीक है। इतनी बात वाज़ह, यानी पहले दोनों हुक्म तोड़ दिए, बिल्कुल उसका तस्करा नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ ये दो अहकाम आते हैं ना, एक तीसरा हुक्म भी था जिसका तस्करा यहाँ नहीं किया गया, लेकिन उस पे इस कौम का रद्दे अमल नोट करा दिया गया। वो क्या था? कि तुम अपने मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ किसी गैर मुस्लिम की मदद नहीं करोगे, यानी अपने बनी इसराइली भाइयों के ख़िलाफ़ किसी नॉन मुस्लिम ताकत की, कुव्वत की मदद नहीं करोगे। ये इनको तीसरा हुक्म दिया गया था तौरात में, जो यहाँ नहीं है, आप अपने नोट्स में लिखेंगे। लेकिन इन्होंने उस तीसरे हुक्म को कैसे तोड़ा? तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उदवान, तुम चढ़ाई करते हो इन पर गुनाह और जुल्म से। ठीक है, बात इतनी बात से होगी। यानी इनको हुक्म दिया गया था कि इस्म और उदवान, यानी नाफरमानी और गुनाह के कामों पे किसी की मदद ना करना। और यह आगे आएगा, सूरह मायदा में भी आएगा, तावन अल बिर व तकवा वला तावन अल इस्मि वल उदवान। इन्होंने वो तीसरा हुक्म भी तोड़ दिया। चलिए अब चौथा हुक्म भी लिखें। इज्तमाई ज़िंदगी का एक चौथा हुक्म इनको क्या था? कि जब कभी किसी जंग या किसी और वजह से तुम्हारे मुसलमान भाई किसी नॉन मुस्लिम के कब्ज़े में चले जाएंगे एज अ प्रिजनर, कैदी बनकर, जंगों में ऐसा होता था, तो तुम अपने उन मुसलमान भाइयों को आज़ाद करवाओगे, पैसे दोगे उनके, रैंसम दोगे और तुम जाके उनको आज़ाद करवा लोगे। ये चौथा हुक्म था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस चौथे हुक्म पे अमल किया। व ई या तू कुम उसारा तुफा दू हम, और जब वो आए तुम्हारे पास कैदी होकर, तो इनका बदला देकर छुड़ाते हो। वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि इनका निकालना ही तुम पर हराम था। बस यहाँ पे रुक जाते हैं। अब हम अभी जितनी बात आयत में आई और जो मैंने आपके सामने रखी, इसका खुलासा क्या है कि बनी इसराइल को तौरात में चार हुक्म दिए गए थे, फोर कमेंडमेंट्स थे। पहला हुक्म क्या था कि अपने हम मजहब लोगों को कत्ल नहीं करेंगे, आज भी मौजूद है। हर मुसलमान को कहा गया कि दूसरे मुसलमान को नहीं मारोगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान की जान, माल, इज्जत दूसरे पर हराम है, जैसे हज का दिन और अरफात का वो मैदान और वो जगह। आपने हज्जतुल वदा के मौके पे ये पैगाम दिया था, ठीक है। दूसरा इनको हुक्म ये था कि दूसरों को घरों से नहीं निकालोगे, आज भी ये जुल्म है। क्या आप किसी को कहें अपने घर से निकल जाओ और बस ख़त्म। तीसरा हुक्म इनको क्या था कि इनके खिलाफ किसी और की मदद नहीं करोगे, यानी जब कोई इन मुसलमानों को ज़्यादती करके इनके घरों से निकालेगा या इनको तकलीफ़ देगा, तो तुम उस वक्त मुसलमानों की मदद करोगे, काफ़रों की नहीं करोगे। और चौथा हुक्म क्या था कि अगर कभी तुम्हारे मुसलमान भाई कैदी बन जाएं, तो फिर तुम उनको पैसे देकर छुड़वाओगे। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या, पहली तीन बातों को तो रिजेक्ट कर दिया। कत्लो गारत भी हुआ, कैसे हुआ अभी थोड़ा सा आपको हिस्ट्री सामने रखूँगी। कत्ल भी करते थे इन्होंने, एक दूसरे को घरों से भी निकाला इन्होंने, मुसलमानों के खिलाफ काफिरों की मदद भी की, और सिर्फ रह गया चौथा काम, कैदियों को छुड़ाना। ये एक नुमाइशी काम था, इसमें इनकी वाह वाह होती थी। उस वक़्त फिर जब ये देखते कि इनके यहूदी भाई कैदियों में है, तो ये जाके पैसे दे के छुड़ाते और बताते कि बस देखा, हमने तो इतने मुसलमानों को आज़ाद कराया। हुआ क्या था, अब ये एक तबसरा है, ये कब की बात है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल जो थी यूशे बिन नून की क़ियादत में फ़लस्तीन को फ़तह करना शुरू किया। सबसे पहले जो शहर फ़तह हुआ वो था अरीहा, अरीहा ये फ़तह हो गया। अब इसके बाद हुआ क्या कि जब सारा फ़लस्तीन फ़तह हो गया, तो होना ये चाहिए था कि एक हुकूमत बनती, ऐसे ही होता है ना, जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो एक हुकूमत बननी थी ना, लेकिन ये लोग फ़िरकों में बंट चुके थे। बनी इसराइल के 12 फ़िरके बन चुके थे, कबीले कह लें, फ़िरके कह लें, बन चुके थे। इन्होंने फ़लस्तीन में एक हुकूमत कायम करने की बजाय 12 हुकूमतें बना ली। अब हुआ क्या, थोड़े थोड़े फ़र्क तो हर फ़िरके के दूसरे से होते ही थे, गवारा कर लेते, आराम से रहते। इन्होंने वो छोटे छोटे जो फ़र्क थे ना, उसकी बुनियाद में आपस में लड़ना शुरू कर दिया। इनकी तारीख मज़हबी जंगों के नाम से भरी पड़ी है। एक दूसरे पे हमला करते, वहाँ के लोगों को निकालते, वो वहाँ से भाग जाते। कुछ लोग वहाँ से भागकर अगर किसी काफिर मुल्क में पनाह ले लेते, या कुफार इनको कैदी या ग़ुलाम बना लेते, तो ये जाके पैसे दे के उनको छुड़ा लेते कि नहीं, ये तो हमारे दीन में है कि अपने भाइयों को हमने आज़ाद करवाना है। किया क्या, अपनी ज़ुबान में आप कह लें कि तीन हुक्म तोड़ दिए और एक मान लिया। अब यही आदत होते होते इनमें रही जब ये मदीना में आए। जब मदीना में आए तो उस वक़्त तीन फ़िरके थे, تین قبیلے کہہ لیں یا فرقے کہہ لیں، یہود کے ایک کا نام تھا بنو نذیر، زوئے سے، زواد سے نہیں، زوئے سے بنو نذیر تھا. دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو قینقا، مشکل نام ہے لیکن لکھ لیں آپ، قینقا. اور تیسرا ان کا قبیلہ تھا بنو قریظہ. بنو نذیر، بنو قینقا اور بنو قریظہ، یہ تین قبیلے تھے یہود کے. اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں دو گروہ رہتے تھے کفار کے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج. اور یہ سب بات اسلام کے آنے سے پہلے کی ہے، میں دہراتی ہوں اپنی بات کو. مدینہ میں جو یہود آئے ہجرت کر کے یا مائیگریشن کر کے، ان کے تین فرقے تھے، قینقا، نذیر اور قریظہ. اور ساتھ ہی ساتھ انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اب ہوا کیا کہ اس دور کے رواج سے کہ یہ آپس میں معاہدے کر کے رہتے تھے، معاہدے کی صورت میں ہوا کیا کہ جو بنو قینقا اور نذیر تھے نا، یہ خزرج کے ساتھ مل گئے. اور یہ سب امیر قبیلے تھے ان کے، قینقا اور بنو نذیر کے جو یہود تھے یہ بہت دولت مند تھے، اور اسی طرح قبیلہ خزرج بھی بڑا باروب قبیلہ تھا، اور اسی سے عبداللہ بن ابی بھی تھا. ان کی آپس میں گٹھ جوڑ ہو گئی تھی، ایک دوسرے کی ساتھ دیتے، مدد کرتے. جو بنو قریظہ قبیلہ تھا نا، اس کی دوستی ہو گئی اوس سے. اور آپ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح کی گروہ بندی ہو گئی ہے کہ شہر دو طبقوں میں بٹ گیا، یہود کے امیر قبیلے کفار کے امیر قبیلوں سے مل گئے، اور بیچارہ ان کا جو نسبتاً غریب قبیلہ تھا وہ کفار کے غریب قبیلے سے مل گیا. چلے اب یہ بات تو ہو گئی. اب ہوتا کیا، دیکھیں ایک طرف اوس ہیں اور ایک طرف خزرج ہیں، یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کی بہت لڑائیاں ہوتی تھیں. پیچھے سے اگر آپ ان کی بھی ہسٹری دیکھیں گے نا، تو یہ بھی دو بھائیوں کی سگی اولاد تھی، ایک دادا کا خاندان تھا، لیکن اتنی بعد میں لڑائیاں آئیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ جنگیں ہوئیں. جنگ بواس نام کی ایک جنگ مدینہ کی ہسٹری میں معروف ہے. ہجرت سے 5 سال پہلے تک یہ لڑتے رہے، اور کہتے ہیں کہ 200 سال تک یہ جنگ چلتی رہی تھی، نسلوں کی نسلیں اس میں ختم ہوئیں. ایک کا بدلہ لینے کے لیے کتنوں کو مارتے تھے، پھر دوسرے چلتے چلاتے. قصہ مختصر، وہی عادت ان کی ابھی بھی تھی. اب اوس اور خزرج جب آپس میں لڑتے، کافر تھے، لڑنا تھا، وہ لڑتے تھے، ہوتا کیا؟ اب ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے کہ اوس کا ساتھ دینے کے لیے بنو قریظہ بھی جاتا، جیسے وہ کہتے ہیں نا ایفیلیٹ ہو جاتا ہے بندہ کسی کے ساتھ، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑے. اب یہ جا کے لڑ رہے ہیں خزرج کے لوگوں سے، ادھر خزرج کا ساتھ دینے کے لیے کون آ جاتے تھے؟ قینقا اور نذیر. تو بعض اوقات پھر یہ ہوتا کہ یہودی کے ایک قبیلے کے ہاتھوں دوسری طرف یہود ہی کا ایک شخص مارا جاتا. کتنے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں کیا حکم ٹوٹا؟ قتل ہو گیا نا یہودی کا، یہودی کا. پھر اس میں ایک دوسرے کو ان کی جگہوں سے نکالتے، قبضے کرتے، خراج ہم والی بات بھی ہو گئی. تیسرا حکم ٹوٹا کہ انہوں نے ان کی خلاف مدد کر دی، جو ان کو منع تھا نا کہ تم ایک مسلمان کے خلاف کافر کی مدد نہیں کرو گے، انہوں نے مدد بھی کی. اب جب یہ سب ہو جاتا نا، تو فوراً پھر ان کی دینی غیرت جو تھی وہ ابھرتی، اور پیسے لے کے جاتے. جو بنی قریظہ کے لوگ پھنسے ہوئے تھے اگر سمجھ لیں کہ خزرج کے پاس، تو یہ دوسرے دو قبیلے جا کے کہتے نہیں نہیں دیکھو وہ ہمارے بھائی تو ہیں، یہ لو ان کے پیسے لے لو اور ان کو آزاد کر دو. اب یہ ایک آنکھ مچولی تھی، اور یہ آنکھ مچولی آج بھی ہوتی ہے. دین کی جو بات آسان لگی، جس پہ عمل کرنا آسان لگا وہ کر لیا، اور جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ کمنٹ کیا، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. سوال اٹھایا تاکہ ان کا ضمیر کھلے جھنجھوڑنے کے لیے کہ کیا تم کتاب کی کچھ باتوں پہ تو عمل کر لیتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے. انہوں نے کتنی نہیں مانی تھی؟ تین نہیں مانی. کتنی مانی؟ کون سی تین مانی؟ जो इनका दिल चाहा, जो इनके हालात का तकाजा था, और कौन सी मानी जिसमें वाहवा थी, नुमाइश। अगर आप इस आयत को आज के हालात से देखें तो क्या आज भी ऐसा नहीं हो रहा? मुसलमान को क्या हुक्म है? बहुत दुख के साथ अब ये लफ्ज़ बोलने लगी हूँ, जो चंद आज के हालात के मुताबिक अगर हम इन आयात को देखें कि क्या आज मुसलमान को ये हुक्म है कि वो दूसरे मुसलमान की जान न ले, है ना? वाज़ह हदीसें आप सूरह मायदा में तफसीलात पढ़ेंगे कि जो किसी मुसलमान को जानबूझ के कत्ल कर देता है तो उसकी सज़ा क्या है, कत्ल ख़ता की क्या सज़ा है, और उसके कफ़ारे और कसास और क्या कुछ रखा हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसलमान एक जस्ते वाहद की तरह है कि जिसके एक हिस्से को दर्द होती है तो सारा जिस्म दर्द महसूस करता है, एक हिस्से को अगर जिस्म में बुखार होता है तो सारा जिस्म उसकी दर्द महसूस करता है। लेकिन क्या आज मुसलमानों के हाथों मुसलमान मारे जा रहे हैं? जो अखबार पढ़ते हैं उनको तो इसकी बड़ी शहादतें मौजूद होंगी। कोई दिन का अखबार आप देख लें कि जहां मुसलमान को मुसलमान के हाथों से ना मारा जा रहा हो, कत्ल किया जा रहा हो, सोचिए ज़रा। फिर दूसरा हुक्म, क्या मुसलमानों को ये हुक्म है कि दूसरों को उनके घरों से ना निकालो? है ना कि नहीं निकालो? घर भी एक इंसान की चीज़ होती, घर से मुराद वतन भी कह सकते हैं। और वो, और आज चलें इज्तमाही लेवल को तो छोड़ दें, इनफरादी तौर पे कितनी औरतों को उनके घरों से निकाल दिया जाता है, और दीन के नाम पे खड़े खड़े तलाक दी, कहा इनको घर से निकाल दो। कॉलोनीज़ की कॉलोनीज़ खाली कर दी मुसलमानों की, और वहाँ नॉन मुस्लिम आ गए। और क्या मुसलमान कुफार की मदद कर रहे हैं दूसरे मुसलमानों के ख़िलाफ़? कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसको एक इंसान पहले से ना जानता हो। और जब बात होती है नुमाइशी नेकियों की, वही ताकतें हैं जो पहले लोगों को लड़ाती और मरवाती हैं, और जब जंगों में लोग मारे जाते हैं तो एड्स भेजती हैं, और बड़ी बड़ी ख़बरें आती हैं, फलां मुल्क के इतने ट्रक गए, फलां के उतने गए। उस दौर में भी यहूद का यही तर्ज अमल था, पहले औस और खजरज को लड़वाते थे, आपस में इनकी खुसर पुसर कराते। क्यों? क्योंकि ये वेपन्स बनाते थे, शुरू से इनका काम है असलह साजी। सुनार थे बुनियादी तौर पे, गोल्ड स्मिथ, इनका काम ही था चीज़ों को ढाल के बनाना। अब हथियार बनाए, अब बेचें कहाँ? अब बेचने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। दोनों को लड़ाते, औस भी लड़ता, खजरज भी लड़ता, पैसे दोनों के पास ही न होते। फिर ये उनको कहते हैं, इधर आओ, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें खजरज से लड़ना है, हथियार चाहिए, हाँ चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं ना, आखिर दोस्त कब काम आएंगे, ये पकड़ो इंस्टॉलमेंट पे। है ये 1,000 दिरहम का, लेकिन तुम 5 साल में दे देना, बस हर माह इसके ऊपर सूद दे देना। एक तरफ हथियार बेचते, पहले देखिए लड़ाइयाँ लगती, फिर हथियार बिकते, उसी से मदीना की पूरी इकॉनमी पे इन्होंने हाथ रखा हुआ था सूद की वजह से। नतीजा क्या निकला कि नस्ल दर नस्ल मदीना के जो लोकल लोग थे ना, वो यहूद के मकरूज थे। इनके आगे ना बोल सकने की बहुत बड़ी वजह भी ये थी कि ये इनके, हाँ इनकी नस्लों की नस्लें गिरवी रखी हुई थी। हथियार भी बिके, पैसा भी इनके पास आ गया, और सूद के ज़रिए ये चौधराहट भी कायम कर ली। इस्लाम के आने पे मदीना में, ख़ास तौर पे जब इस्लाम का पैगाम आया या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो यहूद का एक तो वो तासुब था ना जो पीछे से आप सुनते आ रहे हैं, कौन बताएगा तो मुझे खुशी होगी। अभी तक यहूद की जो बात हमने पढ़ी कि नबी सल्लम के को ना मानने की वजह क्या थी, शाबाश, तासुब। तासुब क्या होता है, आज आपको पता चल जाएगा कि गलत को भी गलत ना कहना इसलिए कि मेरे कबीले का है या मेरे फिरके का है। बहरहाल ये एक वजह थी ना। दूसरी वजह क्या थी, ये मजबूरी थी कि अगर इस्लाम आ गया, इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम ने तो आते ही पहले लड़ाइयाँ ख़त्म की, अख़ुवत कायम की, भाईचारा कायम किया, इससे उनको सोच लग गई, फिक्र लग गई, अरे ये क्या हुआ, हम तो इनको लड़ा के अपने हथियार बेचते थे, इस्लाम ने आके सबको लड़ने लड़ाने से मना किया, हमारी इकॉनमी डूबेगी। और लिख लें, सबसे बड़ी मुखालफत माल की वजह से होती है। इंसान फ़िरके को, सोच को, अफकार को, नज़रियात को भी इग्नोर कर देता है, लेकिन जहाँ माली मुश्किल आती है तो चीखें निकल जाती हैं। इनको लगा कि अब हमारे माली फवायद कम हो जाएंगे और या तो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मुसलमानों को मिल जाएंगे। ये थी वो बुनियादी वजूहात जिसकी वजह से इन्होंने मुसलमानों के साथ इख्तलाफ किया, और एक ही सिलसिले की कड़ी होते हुए भी इन्होंने मुसलमानों का साथ ना दिया। अब हुआ क्या कि जब मुसलमान वहाँ आ गए और वो सब कुछ हुआ तो उसकी सज़ा सबको मिली जिन्होंने गलत किए काम और जो दूसरे भी थे। नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ने इनकी उस अतात को कि थोड़ी सी कबूल करनी और बाकी छोड़ देनी, इसको भी कहा तुम रखो। अल्लाह कहते हैं मुझे नहीं चाहिए अधूरी चीज़। देखिए अल्लाह ताला को मुकम्मल इताअत चाहिए, टोटल सबमिशन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में आता है कि लका मिन सलातिका मा अकिलत मिनहा, तेरी नमाज में से तेरा उतना ही है जिसको तूने समझा। यानी वो नमाज जो सोच कहीं दिल कहीं हाजिर नहीं कुछ नहीं, वो भी नहीं मिलती। इन्होंने वो किया जो आज का मुसलमान कर रहा है, और वो क्या, कुछ को माना कुछ को ना माना। इस पे एक कमेंट आ गया क्या फतुमिनु नबीबा दिल किताब व तकफुरु नबीबात। ये क्या खेल है, अपनी मर्जी का दीन चाहते हो, पहले से सोचे हुए हो कि दीन के इस हुक्म पे तो अमल करना है और दूसरे पे नहीं करना। और बाज़ लोग, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, नीयत ये की होती कि फ़लाँ हुक्म वो नहीं मानना, इससे आगे नहीं बढ़ना। और आज मुसलमानों का भी यही हाल है, अल्लाह ने इनको आईना दिखा दिया कि तुम ये काम करते हो, अपनी मर्ज़ी से दीन को चाहते हो और अपनी मर्ज़ी से छोड़ते हो। है आज इस्लाम में ये बात, पिक एंड चूज़, लव सुना वह, पिक एंड चूज़। देखिए ये अच्छा है, पिक करें, फिर दिल चाहे ले लें, दिल चाहे छोड़ दें, पकड़ लें पकड़ लें, ना पकड़ लें ना पकड़ें, ऐसा है ना। अपनी मर्ज़ी की बातें, मस्जिद में जाते हैं तो हम नमाजी हैं, तिजारत में आते हैं तो हम सूद खोर हैं, ये क्या है। अफतु मेनू नबी बात दिल किताब व तक फुरू नबी बात, ऐसा है कि नहीं। आज मुसलमान भी टाई एंड डाई बन गया, स्प्लिट पर्सनैलिटी। सूरह तौबा में अल्लाह ताला कहते हैं ये क्या करते हो, खलतु अमलन सालिहन व आखिरा सहीहा हो, कुछ अच्छे अमल कर लेते हो कुछ बुरे करते हो। हम सब अपने आप को देखें, किसी को कोई ना देखे, सिर्फ अपने आप को देखें कि अभी तक जो मेरा इस्लाम है वो कैसा इस्लाम है। क्या अल्लाह के सामने डब खड़ब में जाऊंगी, हम वो कपड़ा नहीं पहनते जिसमें मुख्तलिफ रंग आ जाएं, तो हमारे ऊपर एक इस्लाम का रंग और एक ना हो। पहले से सोच के बैठे हैं तो होगा क्या, अमल ही नहीं मिलेगा। आज देखिए कि वो सोसाइटी जहाँ 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, अभी तक वह नमाज कायम हुई नहीं दिखती, क्योंकि नमाज का एक असर है, इन्नस सलात तनहा अनिल फख्शाय वल मुनकर, नमाज बेहयाई और मुनकर से रोकती है। आज सुनने और सुनाने वालों में कितने लोग हैं जो पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 साल से अपनी ज़िंदगी में पूरी 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, क्या ज़िंदगी से मुनकर चला गया, क्या आँखों की हिफाजत हो गई, क्या सलात ने सब्र सिखा दिया, क्या हमारे अंदर इस्लाम की वो मोहब्बत आ गई जो नमाज़ पढ़ने के बाद आनी चाहिए। नतीजा क्या होता है कि हम भी दीन के आधे हिस्से पे अमल करते हैं, आधे पे नहीं करते। रिश्वत भी लिया, कुछ पैसे सदके में दे दिए कि ये पाक हो जाए, हराम कमाई और मस्जिदों को चंदे और डोनेशंस, नुमाइशी नेकियां करना चाहते हैं, स्टेज पे आने वाली सामने स्क्रीन पे दिखती हैं, किसी गरीब को सिलाई मशीन भी देनी है तो वो स्क्रीन पे उसको तस्वीर खिंचवाते हुए, ताकि सारी जगह उसकी गैरत ख़त्म हो जाए देख के कि देखो मुझे एक मशीन मिली थी। ज़िंदगी में माँ बाप को पूछा नहीं, और मरते ही कहते हैं कि उनकी जब तक रस्में नहीं करेंगे लोगों में सर नहीं उठा सकेंगे। कहाँ कहाँ आप ये चीज़ नहीं देखेंगे, हर जगह ऐसे है, दूसरों का खून चूसा जा रहा है, वो कानून बनते हैं जो दूसरों के सांस खींच लें और बाद में उसी में से कुछ खर्च कर दिया जाए। ये तो ऐसे ही जैसे कोई शख्स किसी को कत्ल करे और फिर जाके उसी की नमाज जनाजा पढ़ने लग जाए, कोई शख्स जिना करे और बाद में जाके गुस्ले जनाबत करने लगे, और ये खेल आज घर घर दिखता है। दो मुख्तलिफ किरदार दिखते हैं, मस्जिद में तो आप नमाजी हैं, हाजी साहब हैं, आप मुल्ला हैं, आप मौलवी हैं, और घर में आपसे ज़्यादा बेअख्लाकी कोई नहीं, بیوی کے اوپر آپ کا اتنا رعب ہے، آپ کہتے ہیں سارا دین ہی ہے کہ اللہ نے کہا ان کو مارو تو مارو، یعنی یہ کون سا دین ہے؟ یہ ادھورا دین جو ہوتا ہے نا، یہ بہت نقصان دیتا ہے. اور آج ہمارے دین کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ لوگ دین کے نمائندے بن گئے جنہوں نے خود بھی دین نہیں سیکھا ہوتا، اپنی مرضی کی ہائی لائٹڈ چیزیں لوگوں کو پیش کرتے ہیں. چند گنتی کے ٹاپک ہر جمعے میں دیکھ لیں، آپ خطبوں میں دیکھ لیں، سپیچز میں دیکھ لیں، چند رٹے رٹائے ٹاپک ہیں، کیونکہ پتہ ہی وہ ہے پورا دین خود نہیں سیکھا دوسروں کو کیسے دیں گے. دیکھیے آج کوئی شخص بغیر سیکھے ڈاکٹر بن جاتا ہے نا، تو میرا حال ہے کہ پولیس اس کو پکڑ لے گی تو اچھی خاصی جیل ہوگی، نقلی کا اس کے اوپر ایک اشتہار لگے گا. اور دین سیکھے بغیر کوئی دین سکھائے اور ہم کہتے ہیں دین ہی ہے نا، سوچنے کی بات ہے نا. قرآن پاک ایک آئینہ ہے، یہ ہمارا ایک ایک داغ ہم کو دکھاتا ہے، کہاں سے کوئی بال اگا ہوا ہے، کہاں کوئی آپ کے مسام بند ہے، کہاں صفائی نہیں ہوئی. اور جب ہم قرآن کی محفل میں آتے ہیں تو ہاتھ ٹھنڈے اسی لیے ہوتے ہیں کہ اللہ اگر اس حال میں مر جاتے تو ہوتا کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قوموں کا یہ مزاج ہو جائے تو یاد رکھو، فما جزاؤ من یفعل ذلک، پس نہیں ہے جزا اس کی جو یہ کرے. کیا کرے؟ یہی تؤمنون بی بات وتکفرون بی بات. یعنی جب قوموں کا یہ مزاج ہوتا ہے نا تو قوموں کا نصیب کیا ہوتا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی رسوائیاں. یہ دنیا کی آج مسلمان پیٹ رہا، اس کی وجہ مل گئی قرآن سے، یہ قرآن نے لکھی ہے، میں نے نہیں کہی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ کی چنی ہوئی کوئی قوم، کوئی گروہ، دیکھیے اس میں آپ انفرادی طور پہ بھی لا سکتے ہیں، اس وقت اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی اس قرآن کے لیے چنا، یہ جگہ اللہ نے ہمارے لیے چنی. اگر ہم نے اس میں اپنی مرضی کا دین لوگوں کو دیا نا، اور جو ہمارے نظریات یا ہمارے خیالات پہ خلاف ہوئی بات اس کو چھپا لیا، اللہ نہ کرے ہمارا بھی یہ انجام ہوگا کہ خزی فی الحیات دنیا، اللہ اپنوں میں رسوا کر دے گا، اللہ گھروں میں رسوا کر دے گا ہمیں کہ تم نے دین کو کھیل سمجھا، مس انٹرپریٹ کرتے ہو، نہ تمہیں آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اور اپنے خیالات قرآن کی آیتوں میں پڑھاتے ہو. میں تو پڑھتے ہوئے اتنا اپنے آپ کو فوکس کرتی ہوں، یقین کریں، پتہ نہیں آپ تو ابھی شروع میں، کچھ آگے جائیں گے تو آپ مجھے جج کر سکیں گے. میں فیل کرتی ہوں جب میں قرآن پڑھا رہی ہوتی ہوں نا، میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے، لٹرلی میں اپنے آپ کو فیل کرتی ہوں کہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہوں، پتلی سی روڈ ہے، اور ذرا سی گاڑی میری ادھر گئی نا، سٹیئرنگ گھوما، تو میں اپنے ساتھ اتنوں کو گھڑے میں لے جاؤں گی. میں دعا مانگ کے آتی ہوں گھر سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ بیٹھ کے اس کی تفسیر میں کوئی ایسی توفیق نہ دینا کہ میں کسی کے خلاف کوئی اپنے دل کا غصہ نکالوں، کوئی اس کی اپنی مرضی کی تفسیریں کروں، معنی الٹے پہ نہ ہوں، اور تاکہ سب کو خوش کر دوں، اور بعد میں ساری زندگی اس آیت کے ساتھ آپ کے وہ چیزیں چپک جائیں. آپ کو کسی کے خلاف بولنا ہے، میدان جہاد موجود ہے، آپ جائیں باہر اسٹیج پہ بیٹھیں، خوب تقریریں کریں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے قرآن کی آیت کھولتے ہیں، بس تھوڑی سی اس کی وضاحت، اور اس کے بعد پھر بات یوں جاتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی کھڑے کہاں تھے. واپس کب آتے ہیں؟ جب ٹائم پورا ہو چکا ہوتا ہے، کہتے ہیں اب وقت ختم ہو گیا، اب اگلے ویک اس کی تفسیر پھر کریں گے. اور یقین کریں یہ اتنی بڑی خیانت ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے قرآن کا کیا مفہوم لیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی قوموں کو میں دنیا میں ذلیل کر دیتا ہوں. آج مسلمانوں کو اگر عزت دلوانی ہے نا، تو پورا دین پیش کرنا پڑے گا، اور پورا دین پیش کرنے کے لیے پہلے پورا دین سیکھنا پڑے گا. اور کیا دنیا کی یہ رسوائی آخرت کے عذاب کم کر دے گی؟ نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ شدید عذاب میں ہوں گے. اللہ اکبر. عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں نا، وہ آخرت کے عذابوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا کہ جو دنیا میں مشکل آئی، اس سے ہمارے آخرت کے گناہ، آخرت کے درجے بلند ہوں گے. لیکن قومی سطح پہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قومیں جو مسلمان ہونے کے باوجود دنیا میں رسوا ہوئی ہیں نا اپنے ہی عملوں کے برے پن سے، ان کی یہ رسوائی ان کے آخرت کے عذاب کو کچھ بھی کم نہیں کرے گی. استغفر اللہ. کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں بھی ڈوبے تو وہاں بھی ڈوبے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر وہ وہاں جا کے بھی عذاب میں ہوں گے. کیوں؟ کہ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. تم نے کیا کھیل سمجھا؟ تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی سی آئی ڈی سے بھی کم سمجھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا تم کیا کرتے ہو؟ تم نے اللہ کے سکینرز کو اپنے سکینر سے بھی ہلکا جانا तुम बहुत छोटे हो, और ये वो कानून है जिसको आप यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं, आफाकी कानून है, सच्चाई है कि जो कौम मुसलमान होकर भी अल्लाह के पूरे दीन को नहीं मानती, अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को हलाल और अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को हराम कर दे, फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में भी माफ़ नहीं करता। मुझे किसी ने एक ईमेल भेजा थोड़े दिन पहले, एक ऐसा चर्च है कि जो पूरे का पूरा बॉडी पार्ट से बना है। आप पढ़ के देखें, आप कांप जाएंगे। ऐसी तारीखी वाकयात हैं कि मुसलमानों को मारा गया, उनकी खोपड़ियों से मिंबर बने हुए हैं, दीवारें मुसलमानों की टांगों की हड्डियों की बने हुए हैं। मेरे पास सेफ है अभी भी। हलाकू खान है जो मुसलमानों को मारा पीटा था, क्यों मारा था? मुसलमानों की लाइब्रेरियों को जो अस्तबल बनाया गया, क्यों बनाया गया? ऐसे मुसलमानों की लिखी हुई किताबें दजला और फरात में गिरी थी, कई दिन तक उनका पानी स्याह रहा, तो स्याही की वजह से। क्यों? अल्लाह ने कहा ये खोपड़ियाँ मेरे आगे नहीं झुकती, आओ दुश्मनों इनको मार दो। और ये किताबें अब कोई नहीं पढ़ता, जो गंगा जमुना में इनको बहवा दो, इनको दरियाए फरात में। जब मुसलमान नाम का मुसलमान हो और काम का मुसलमान ना हो, अल्लाह को बड़ी गैरत आती है। कोई शख्स आपको नहीं कह रहा कि मैं आपके लिए काम करूंगा, आपको कोई गिला नहीं। आप राजातों को क्यों नहीं कहते कि ये घर कमरा क्यों नहीं साफ किया? हु केयर्स, उसने आपको कहा ही नहीं। जब कोई कह दे कि मैं करूंगा और फिर ना करे, अल्लाह ताला को ये बर्दाश्त नहीं है। मुसलमान वो वाहिद फिरका होता है दुनिया में जो अल्लाह को कहता है, अल्लाह हम तेरे हैं, हम तेरी मानेंगे, हम दुनिया में तेरा कानून नाफिज करेंगे। लेकिन जब नहीं करते तो हाल क्या है कि उलाई कल्लजी नश्तरावुल हयात दुनिया बिलाखिरा। देखिए आखिरी आयत, सारी बातों का लुबे लबाव, ये हैं वो लोग जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखरत के बदले ख़रीद लिया। वजह समझ आ गई कि मुसलमानों में भी ये बाज़ किताब किसों को मानना और बाज़ को छोड़ना कब होता है? जब दुनिया के फ़ायदे सामने आ जाते हैं। अकेले में तो रोते होंगे, अकेले में तो अल्लाह से मोहब्बत होगी, लेकिन जूं ही दुनिया का को कोई फ़ायदा सामने आता है, फिर कारोबार शुरू हो जाता है आखरत को बेचने का। फ़ला युख़फ़्फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनसरून, बस उनका अजाब हल्का नहीं किया जाएगा उनसे और ना उनकी मदद की जाएगी। कौन सा अजाब? दुनिया का भी और आखरत का भी। टेम्परेचर कम नहीं किया जाएगा कि चलो 250 से कम करके 200 ही कर दें। मुस्तकिल रहेगा और एक ही लेवल का रहेगा, और कोई मदद नहीं होगी वहाँ, कोई इनका काम नहीं करेगा। अल्लाह करे कि आज हम मुसलमान इस बात को समझ, कोई दुनिया की ताकत हमारी मदद नहीं कर सकती। आप सारी दुनिया से भीख मांग के एड्स जमा कर लेना, लेटेस्ट एनर्जी आपके पास आ जाए, वेपन्स आपके पास आ जाएं, वो हाथ ही नहीं है जो वेपन्स को चलाने वाले हैं, वो बंदा है मोमिन का हाथ ही नहीं है कि जिसके पीछे अल्लाह की मदद आती है, सब बेकार होगा। सबक का खुलासा क्या है? कि अगर उम्मत मुस्लिमा ये चाहती है कि वो दुनिया की रसवाई और बेइज्जती से निकले, तो उसको अपने दीन को पूरे का पूरा लेना पड़ेगा। पिक एंड चूज नहीं बनना। आज लोग गुनाह का काम करके भी कहते हैं ये हमारा धंधा है, ये हमारा जिस्म है, अल्लाह ने हमें कहा हम इसको जो मर्जी करें, हम नमाजें भी पढ़ते हैं और हम जिस्म फरोशी भी करते हैं। मुहर्रम आता है तो बहुत सारे लोग कपड़े बदल के दीन के नुमाइंदे बन के भी सामने आ जाते हैं, जो आम दिनों में गुनाह की महफिलें सजाते हैं। ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह ताला से इज्तमाई माफ़ी मांगी जाए। इस रुकू का एंड तो मुझे यही लगता है कि इनफिरादी नहीं, इज्तमाई माफ़ी का अहतमाम किया जाए कि अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे। और ऐसे लगता है कि दूरी बतलैहिमुज़्ज़िल्ला वल्मस्कना, मुसलमानों को भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम पे भी ज़िल्लत और मस्कनत आ गई। हर साल के हज और उम्रे आपको नहीं बचा सकते अगर आपकी ज़िंदगी में पूरा इस्लाम नहीं है। कमाई अगर हलाल की नहीं तो वो उम्रे हज हुज्जत बन जाएंगे, वो मस्जिदें कभी किफ़ायत नहीं करेंगी जहां आप कहते हैं आने दो माल जहां से मर्जी आए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे हाल की इस्लाह फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत सुनते हैं।
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.